उपस्थित संत महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, मानव सेवा संघ की दृष्टि से मनुष्य के जीवन में ईश्वर विश्वास का क्या महत्व है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ईश्वर विश्वास एक ऐसा विलक्षण तत्व है हमारे जीवन का कि जिस किसी भाई बहन ने इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि परमात्मा है और उन्हीं से मेरा नित्य संबंध है, केवल इतनी बात मान लेने से ही चमत्कारपूर्ण परिवर्तन अपने आप में आता है। महाराज जी का एक छोटा सा नोट मेरे पास एक दिन मिला, बड़ी बढ़िया भाषा में है, दो चार पंक्ति सुना के फिर चर्चा करती हूँ। कह रहे हैं परमात्मा है यह सुनने के लिए कितनी भूमिका तैयार चाहिए। अब आप सोच करके देखो कि हम लोग भूमिका तैयार करके सुनने आए हैं क्या। मैंने ऐसा सुना है कि पुराने समय में अनुभवी संत जन वन में निर्जन में रहा करते थे और नगरों में से कोई कोई जिज्ञासु जब सत्य की जिज्ञासा से अथवा प्रभु प्रेम की अभिलाषा से व्याकुल होता तो भाग भाग करके वन में संतों के पास जाता और अपनी बात बताता उनको। तो कई उदाहरण ऐसे सुने गए कि वे संत उनको कोई न कोई सेवा बता देते, ये था ठीक है तुमको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए मिल जाएगा। कैसे मिलेगा महाराज? तो महाराज ने उस आदमी की योग्यता दशा देख करके कोई सेवा बता दी, करते रहो करते रहे करते रहे करते रहे बड़ी लगन से, दो महीने चार महीने साल दो साल बीते, बीच बीच में जाकर के फिर पूछते महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर अच्छा मिल जाएगा, चलो करते रहो करते रहो। तो अर्थ क्या है कि अनुभवी संत जन साधक को कोई सत्य सुनाने के लिए पहले उसको तैयार किया करते थे। सुख का भोग छूट गया, आलस्य छूट गया, सुविधा पूर्वक रहना छूट गया और तन मन सब शक्ति सब योग्यता संत की सेवा में लग गई तो अपनी स्वाधीनता चली गई, अपने संकल्प से काम करना खत्म हो गया। ये सारी तैयारी संतजन पहले उस जिज्ञासु की करा लेते और तब मैंने सुना है कि उनको कोई वाक्य सुनाया जाता खास तैयारी के बाद खास विधि विधान से खास समय पर, ऐसा मैंने सुना है। तो उस दिन जब मैं देख रही थी महाराज जी के प्रवचन का नोट सब जो मेरे पास है तो उसमें यह गद्य खंड मिला मुझे। वो कह रहे हैं कि परमात्मा है यह सुनने के लिए कितनी भूमिका तैयार चाहिए, पहले से कितनी तैयारी करोगे तब इस वाक्य को सुनने के अधिकारी बनोगे। नहीं तो क्या होता है कि हम कहते जाते हैं सुनते जाते हैं और वो जा करके भीतर में कहीं पर स्टैंप लगाता ही नहीं है, कहा हुआ सुना हुआ भीतर पता नहीं क्या क्या कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है। संत की वाणी हम सुन लेते हैं कान से
लेकिन आम पर जा करके वो स्टैंप लगाता ही नहीं है, उड़ जाता है, तो फिर उसी को सुनने के लिए दोबारे आते हैं, तो फिर उसी को सुनने के लिए और प्रयास करते हैं। तो मुझे यह वाक्य बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी ने उत्तर क्या दिया है, अपने से अपनी ओर से बताया है, परमात्मा है यह सुनने के लिए वह तैयारी चाहिए जिसमें सारा संसार दुख रूप मालूम होने लगता है। तो सोचा मैंने, तो हमने कहा कि तब तो हम अधिकारी ही नहीं हुए, क्योंकि सारा संसार अभी तो दुख रूप मालूम नहीं हो रहा। अभी क्या हो रहा है कि मन के प्रतिकूल कोई कोई परिस्थिति दुख रूप ही लग रही है, ठीक है ना? मन के प्रतिकूल कोई कोई व्यक्ति के साथ में रहना दुख रूप मालूम हो रहा है। सारा संसार दुख रूप तो हुआ ही नहीं, इसलिए परमात्मा है यह वाक्य मेरे व्यक्तित्व पर स्टैंप नहीं लगा पाता। दूसरा पॉइंट है इसी में, अपनी असमर्थता की गहरी पीड़ा होनी चाहिए। दो बातें हो गई ना, ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अब उनकी मौत थी, अब किस लहर में बोल रहे थे पता नहीं, हमारे पास इतना ही सा लिखा हुआ है। और ये है 9573 गीता भवन में बट वृक्ष के नीचे बातचीत हो रही थी, उसमें से इतना मैंने लिखा है। 1973 के मई महीने 9 तारीख की बात है। अपनी असमर्थता की गहरी पीड़ा होनी चाहिए, तो यह भूमिका तैयार हो जाए तब हम इस वाक्य को सुनने के अधिकारी बने कि परमात्मा है। इतनी तैयारी के साथ परमात्मा को सुनने से उसे मान लिया जाता है। इतनी तैयारी करके सुनने चलेंगे तो मानने की सामर्थ्य आ गई, फिर परमात्मा उसका अभाव मिटा देते हैं। बहुत बढ़िया बात है, परमात्मा उसका अभाव मिटा देते हैं, फिर उसका दुख मिटा देते हैं, फिर उससे मिल भी लेते हैं। शरणागति स्वीकार करते ही मोह का नाश हो जाता है, भक्त तत्व ज्ञानी भी हो जाता है। और कहते कहते कभी कभी महाराज जी अपनी बात भी कह डालते थे, उसी जगह पर ब्रैकेट में मैंने ये लिख रखा है, वहाँ होगा उन्होंने कहते ही शरणागति स्वीकार करते ही मोह का नाश हो जाता है, भक्त तत्व ज्ञानी भी हो जाता है, और बिना किसी प्रक्रिया के मुझे तत्व ज्ञान हो गया। महाराज जी का वाक्य है, सिद्धांत बोलते बोलते अपने अनुभव की बात बोल गए, बिना किसी प्रक्रिया के मुझे तत्व ज्ञान हो गया। तो अभी हम लोग इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, ईश्वर को मानने की आवश्यकता क्या है, ईश्वर को मानने में अपने लोगों को तैयारी कितनी चाहिए। तो कुछ बातें श्रावण काल की आपकी सेवा में निवेदन करूं। अगर मैं पूछूं कि आप भाई बहनों में से कितने साधक ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं, ऐसा मैं पूछूं तो बहुत ही तत्परता के साथ हमारे सभी भाई बहन हाथ उठा देंगे, ठीक है ना? इसमें कोई झूठी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है, हम सब लोग उनको मान करके बैठे हैं। लेकिन अब इसके साथ ही अपनी दशा को देखें, ईश्वर को मानने वाले का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि उसके जीवन में से अभाव खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है ना? जीवन में अभाव सताता है, इस बात का अनुभव आप सभी अपने अपने ढंग से करते होंगे। मुझे पता नहीं है कि कैसा कैसा अपने लोगों को लगता है, लेकिन अपनी बात मैं जानती हूँ, अपना पता मुझे है। बहुत छोटी उम्र से खूब खेल रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब मित्र मंडली में सभी सहेलियों के साथ, तो किसी भी प्रकार से मुझको भीतर से उतनी प्रसन्नता लगती ही नहीं थी कि जितनी लगनी चाहिए। तो खेलते खेलते मैं रुक जाती और सोचती कि बस हो गया, इतना ही मजा है, इससे तो मेरा जी भरा नहीं, और मिलना चाहिए, और मजे की खोज में चलो, और खेलो, और खाओ, और पहनो। ऐसा करते ही करते थोड़े ही समय में इतनी घनी प्रतिकूलता सामने आ गई, सब सब प्रेम का जो एक वातावरण माता पिता के लाल प्यार दुलार का, खेलने का कूदने का, वो सब एकदम एक भयंकर घोर दुखद परिस्थिति में समय बदल गया। तो अब उसके बाद तो फिर अभाव की पीड़ा का क्या करना, तो वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और जब मैं संत के पास पहुंची, वो इस प्रश्न को लेकर पहुंची कि क्या मनुष्य सारी जिंदगी अभाव की पीड़ा को सहते रहने के लिए पैदा हुआ है, क्या मनुष्य हमेशा अभाव में पड़ा ही रहेगा कि अभाव मिटता भी है? तो मैं अपने ढंग से अपनी साहित्यिक भाषा में बोला करती स्वामी जी को, महाराज मैं तो अभाव का अभाव करने आई हूँ। अभाव का अभाव कैसे होता है ये मुझे सिखाओ, बताओ। तो अभाव की पीड़ा को जिन भाई बहनों ने अनुभव किया है उनको इस बात का प्रत्यक्ष आनंद आ गया होगा कि ईश्वर हैं और मेरे अपने हैं, इस स्वीकृति मात्र से कैसे वो भीतर की कसक, एक बेबसी की पीड़ा, अभाव का एक दुख कैसे मिट जाता है, ये उन भाई बहनों के अनुभव की बात होगी। मैं समझती हूँ कि साधारण का है, साधक लोग क्या मान लेते हैं कि हम खुद आंख बंद करके जप करेंगे, ध्यान करेंगे, नाम लेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो उसका परिणाम ये होगा कि किसी दिन भगवान प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, मुझको दर्शन मिल जाएगा, मैं देख लूं कि ये है भगवान। ऐसी बात, ऐसी कल्पना, ऐसा चिंतन भाई बहनों के दिल दिमाग में रहता, साधकों से मैंने ऐसी चर्चा सुनी है। लेकिन जीवन का विश्लेषण करने की आदत जो थी मेरी पुरानी, उसमें मानव सेवा संघ का सिद्धांत जो है वो एकदम 100% फिट बैठ गया। उसका मतलब ये है कि किसी क्षण में भगवान तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष दिख गए, दर्शन मिल गया, तो इसको तुम साधन की सफलता मानो तो ये बेकार की बात होगी। क्यों? क्योंकि इसी पर साधक की दृष्टि अटक जाएगी, वो हर समय ऐसे ही सोचता रहेगा। फिर क्या होगा कि उसके संकल्प से, उसके मानस की बनावट के अनुसार कभी कुछ ऐसा हो भी गया तो क्या हुआ, कभी कभी एक झलक मिल गई और फिर वो छिप गई, तो कहाँ गया तुम्हारा ईश्वर प्राप्ति का अनुभव? ठीक है ना? वो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जीवन का विश्लेषण करके, व्यक्तित्व का विश्लेषण, एनालिसिस करने की जो एक पृष्ठभूमि थी मेरी, उसमें महाराज की वाणी और साधन का पल एकदम फिट बैठ गया। क्या हो गया कि मैंने यह जाना कि जब साधक अपनी स्वेच्छा से जीवन की आवश्यकता को सामने रखकर परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेता है और उनको अपना मान लेता है, तो उसके भीतर अपने में जो कमी महसूस होती थी, अभाव अभाव हर समय सताता रहता था, वह अभाव तत्काल ही मिट जाता है। ये किसका फल हुआ? ये ईश्वर विश्वास और संबंध को स्वीकार करने का फल हुआ। ये तो साधक की दृष्टि से हो गई, और ऊपर से देखो तो और क्या हुआ? तो और ये हुआ कि जब सत्य स्वीकृति आपने ली अपने लिए, तो जो परमात्मा नित्य निरंतर आप ही में विद्यमान रहते आए हैं सदा से, उन विद्यमान परमात्मा का एक प्रभाव आपके अनुभव में आ गया। उनके तो और बहुत से प्रभाव हैं, लेकिन जहाँ से अपने ईश्वर विश्वास का प्रभाव आरंभ हुआ था, जो श्री गणेश हुआ था, वो मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया। महाराज जी ने कहा न कि इतनी तैयारी के पश्चात परमात्मा को सुनने से उसे मान लिया जाता है, परमात्मा उसका अभाव मिटा देते हैं। तो पहले अभाव मिट जाता है, फिर दुख मिट जाता है, फिर उनसे मिलना भी हो जाता है, फिर जीवन सरस भी हो जाता है। तो आज अपने लोगों के लिए पाठ कौन सा लेना है? हम सब लोगों को पाठ भी तो लेना है ना, केवल सिद्धांत को नहीं सुनना है। ऐसा ऐसा होता है, ये अनुभवी संत ने कह दिया। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे उस अनुभव को ग्रहण करूं? तो अब आप सोच करके देखिए कि जिस समय से आपने प्रभु की सत्ता को स्वीकार किया, उनकी आत्मीयता को स्वीकार किया, अपने को उनके प्रेमी बनाकर रखना पसंद किया, उस समय से लेकर अब तक के आपकी जो वर्तमान की दशा है, उसमें परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, देखने की बात है। अभाव सताता है कि अभाव मिट गया? भीतर भीतर भरा हुआ लगता है कि सूना सूना लगता है? ऐसा देखना है। तो जब वस्तुओं और व्यक्तियों की आसक्ति में आदमी फंसा रहता है, तो आसक्ति का प्रभाव निरस्ता और अभाव, और ईश्वर विश्वास और भक्ति का प्रभाव है सरसता और पूर्णता। तो अगर भीतर भीतर सूना सूना लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, बाहर की वस्तुओं से मिलने जुलने बोलने की आवश्यकता मालूम हो रही है, व्यक्तियों से बातचीत करने की आवश्यकता मालूम हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि मेरा ईश्वर विश्वास मेरे जीवन में सजीव नहीं हुआ। ठीक है ना? बिल्कुल सच्ची बात है। कभी कभी मुझे इतना दुख होता है, किसी किसी साधक के मुंह से मैं सुनती हूँ। एक साधक पति पत्नी आए और दोनों ही बहुत अच्छे पढ़े लिखे समझदार और पैसे वाले भी, तो उन्होंने कहा कि हम आपके पास रहेंगे और एकांत में रहेंगे, अपनी साधना में रहेंगे। पति ने बताया मुझे कि साधना के लिए मैंने घर बार छोड़ दिया है और बहुत अच्छी नौकरी थी, क्लास वन पोस्ट था गवर्नमेंट में, दे सकते थे तो मैंने दे दिया। दो चार दिन वे लोग मेरे पास नहीं आए, रहे अपनी साधना में। उसके बाद वो महिला निकल के आई मेरे पास भोजन दिन के बाद, कहने लगी कि माता जी अकेले अकेले रह के तो आदमी पागल हो जाए। तो मैंने मन में सोचा, अरे मेरी बहनी, मैंने कब कहा था कि तू अकेले बैठ, हमने कहा था। फिर मैंने उन लोगों को बैठा करके बातचीत किया, हमने कहा इसका अर्थ ये है कि जिस सत्य को तुमने स्वीकार किया, जिस साधना की लाइन को तुमने पकड़ा, उसने तुम्हारे जीवन का स्पर्श नहीं किया है, नहीं तो अकेलापन कैसे फील होगा, क्यों मालूम होगा कि मैं अकेले हूँ। वो तो वस्तुओं और व्यक्तियों का संबंध जो है, वो व्यक्ति के भीतर हृदय में नीरसता, शुष्कता, अकेलापन भर देता है। तो आसक्ति के कारण तुमको भीतर भीतर सूना लगता है, तो भ्रम बस तुम बाहर बाहर से बातचीत करके, काम धाम करके, घूम फिर करके अपने को बहलाना पसंद करते हो। नहीं तो सच्ची बात क्या है, सच्ची बात ये है कि जिसने सत्य को स्वीकार किया, तो उस स्वीकृति मात्र से उसके जीवन में ऐसी लगन लग जाती है कि अपने से भिन्न किसी की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक कसौटी ये मैं रखती हूँ अपने भाई बहनों के लिए, बहुत आत्मीयता की बात है, बहुत ही प्रियता की बात है, किसी की आलोचना की दृष्टि से नहीं, किसी साधक को छोटा समझ के नहीं, हम सभी प्रभु पंथ के पथिक हैं। बड़ा अच्छा होगा कि हम सबका सामूहिक संकल्प एक दूसरे को शक्ति प्रदान करता रहेगा, और अपने रास्ते पर हम जहाँ भी रहेंगे सब एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आज संत धाम में हम सभी इस पवित्र उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं। 22 तारीख को समारोह पूरा हो जाएगा, ये सारी मूर्तियाँ बिखर जाएंगी, जगह जगह पर चली जाएंगी। तो शरीर से भले हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं, परंतु एक संत की कृपा की छाया में हमने अपने को साधक करके स्वीकार किया, एक परमात्मा की प्रेम की गोद में हम लोगों ने जीवन धारण किया है, और उसी की कृपालुता, उसी की मंगलकारिता के आधार पर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इस दृष्टि से हम सभी भाई बहन एक हैं, और हम सबके हृदय में ये भाव होना चाहिए कि हे परमात्मा, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्रभु, हम सब भाई बहनों का कल्याण करो। तो इस सद्भावना में शरीर की दूरी से कोई बाधा नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? तो इसी भाव से मैं कह रही हूँ कि हम लोगों को अकेले में बैठ करके अपना नंगा चित्र अपने सामने रख करके देखना चाहिए कि मेरी स्वीकृति और मेरी साधना ने मेरे हृदय को स्पर्श किया कि नहीं किया। प्रभु हैं, हम कहेंगे कि आप इनकार करिए, कह दीजिए कि नहीं है, तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसी बात कह रही है बहन जी, ये कैसे हो सकता है, हम ना कैसे कह दें। तो कहने के लिए तो हम ना नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा जीवन इस बात की ओर संकेत करता है कि मैं ना कह रही हूँ। कैसे? अब आप देखिए, अकेले अकेले इन सब बातों पर मैं विचार करती रहती हूँ, तो मुझको तरह तरह की बातें सूझती रहती हैं। अब देखिए कितने प्रकार के लोगों से व्यवहार करना पड़ा। अगर आप किसी से झूठ मूठ को बात बना रहे हैं, मन में है कुछ है, और मुख से बोल रहे हैं कुछ है, क्या ये नहीं कहा जाएगा कि उस समय आपने उस सर्वव्यापी परमात्मा के अस्तित्व को इनकार कर दिया होगा? जी ठीक है ना? और नहीं तो भक्त क्या करता है, अपनी ही भूल से पीड़ित होकर के, अधीर होकर के भक्त कहता है काम खले विनती करूं, काम खले विनती करूं, लाज आवत है मोय, तुम देखत अवगुण कियो कैसे भाऊ सोय। अब हृदय पर हाथ रख करके सोचो तो कि सत्य से भटक करके, सत्य से विच्छिन्न हो करके जब हम लोग कुछ करते हैं तो उस समय याद रहता है क्या कि वो मेरा सर्वज्ञ प्यारा, सर्वव्यापी प्यारा देख रहा है, याद आता है? अगर याद आता है तो हम लोग सत्य से हट करके कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और अगर याद नहीं आता है, अपने को बुद्धिमान सोच करके दूसरे की अजानकारी का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, तो जिस समय ऐसी प्रवृत्ति में लगा है कोई, उस समय ईश्वर के अस्तित्व को उसने इनकार कर दिया कि नहीं कर दिया? जी कर दिया। आप भक्त हो गए कि नहीं? प्रभु का नाम सुनके आपके अश्रुपात हो रहा है कि नहीं? कि भाव समाधि में आप डूबे हैं कि नहीं? कि आपके अहम का लोप हो गया है कि नहीं? ये तो पीछे की बात है, देखा जाएगा, विकास होगा तब ये बातें होंगी। लेकिन आज की अपनी प्रारंभिक दशा को देखो कि हम सब लोग ईश्वर विश्वासी बनकर बैठे हैं और सत्य वचन की जगह पर अगर मिथ्या वचन का प्रयोग कर रहे हैं तो जिस किसी से हम झूठ बोल रहे हैं उसके भीतर हमारा सर्वज्ञ प्यारा मौजूद है कि नहीं है? है तो उस भक्त की भांति क्या मेरा हृदय फटना नहीं चाहिए इस अपनी भूल से? का मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोल, तुम देखत अवगुण कियो कैसे भाऊ सोय। ये पीड़ा होती है क्या? अगर होती है तो वह समर्थ तत्काल ही उसको परम पवित्र बना लेता है, देर थोड़ी लगती है, देर नहीं लगती है। जहां भीतर में अंतर में ग्लानि पैदा हुई कि हाय हाय ये मैंने क्या किया, अपने प्यारे के देखते देखते मैंने ऐसे वचन मुख से निकाले जो कि नहीं निकालना चाहिए था, अपने प्यारे की उपस्थिति में उनके इस प्राणी का तिरस्कार किया मैंने, समझा मैंने, कड़े वचन सुनाए मैंने, हाय हाय मैंने ये क्या किया। तो जिस समय ईश्वर विश्वासी के हृदय में ये ग्लानि उत्पन्न होती है कि हाय मैंने तो जो नहीं करना चाहिए था तो कर डाला, अब क्या करूं, तो जिस समय अंतर में अपनी भूल के लिए ग्लानि पैदा होती है उसी समय वह अंतर यानी प्रभु उसको साधु के समान पवित्र बना देते। पता नहीं ईश्वरवाद का क्या अर्थ लिया जा रहा है, खास वेशभूषा हो गई तो ईश्वरवादी हो गए, खास प्रकार का रहन सहन ढंग बना लिया तो ईश्वरवादी हो गए। तो भाई वेशभूषा रहन सहन का ढंग करेगा ये सब तो बाद की बात है, बाहर की बात है, अंतर की दशा को देखो कि जिस विश्वासी का विश्वास मैंने धारण किया उसने मेरे हृदय को स्पर्श किया कि नहीं। अगर उस विश्वास से मेरा हृदय जुट गया है, अगर मेरे विश्वास में इतनी सजीवता है तो मेरे हृदय में कोमलता आ जानी चाहिए थी, मधुरता आ जानी चाहिए थी, गैरियत की भावना मिट जानी चाहिए थी, अहम का अभिमान गल जाना चाहिए था, हृदय की कठोरता घट जानी चाहिए थी, ठीक ही नहीं थी? तो एक भोली भाली साधक महिला बहन हमारी एक दिन आकर के मुझसे कहने लगी, किसी संत के बारे में चर्चा हम लोगों ने की थी, तो संत की घटना ऐसी है कि वे प्रभु की आराधना में भोर में सर्वदे बैठे थे, तो जिनके हृदय का तार परमात्मा के साथ जुट गया है, उनकी याद में इतना प्रेम उमड़ता है कि समय और स्थान का भाव खत्म हो जाता है। शरीर का भाव नहीं रहा तो टाइम एंड प्लेस कंसेप्शन रहेगा कैसे? काल स्थान खत्म हो गया, बहुत देर हो गई, जो काम प्रतिदिन वे किया करते थे वो नहीं कर सके। तो जब उनके ध्यान में आया तो वे दौड़ करके गए कि आज तो बड़ी देर हो गई, मुझे समय पर पहुंचना चाहिए था, या काम मेरे जिम्मे था, मुझको करना चाहिए था, सबको बड़ी तकलीफ हुई होगी। दौड़ करके गए देखने पूछने कि किसने किया होगा, कैसे काम हुआ होगा। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि तुमको हो क्या गया, तुम ठीक समय पर आए तो थे, तुमने सब काम किया। तो ये समझ गए, बड़े व्याकुल हो गए कि अरे ये कैसी मेरी पूजा, मेरे प्यारे को मेरी जगह पर झाड़ू लगाना पड़ा, बिस्तर बिछाना पड़ा, टोकरी उठानी पड़ी। बहुत व्याकुल हो गए। ये कथा मेरी उस बहन ने सुन लिया था, तो एक दिन आई मेरे पास और कहने लगी, दीदी एक बात बताओ मुझे। मैंने कहा बोलो भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा, उन संत का नाम लिया, हम लोग जानते हैं खूब परिचित संत है, उनका नाम लिया। सुनने लगी कि वो तो भूल गए थे तो भगवान ने उनकी जगह पर झाड़ू लगा दिया, सब काम कर दिया। और दीदी मैं तो सो गई थी तो मेरा काम तो भगवान ने किया ही नहीं। हृदय का भोलापन है, बहुत भोलापन है, लेकिन हंसी आ गई मुझे भी, जैसे आप सभी हंस रहे हैं। भक्ति का अगर ये साधना रखते हैं तो भक्ति का अगर ये अर्थ कोई लगाए कि मैं सो जाऊं, मुझे नींद आ जाए और भगवान मेरी जगह पर सब काम कर दें, तो ये तो बड़ी भारी भूल होगी। भक्त तो ऐसा नहीं करते हैं, भक्त तो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि रामायण की प्रतियां लिख लिख करके वो रखते थे कुटिया में। तो पुराने उस समय के समसामयिक पंडित लोग जो थे उनमें बड़ा द्वेष पैदा हो गया कि इसका बड़ा नाम हो रहा है। तो उन्होंने चोरों को भेज दिया रात में कि जाकर के कुटिया में से उनकी लिखी हुई प्रति चुरा लाओ। ये चोर जब वहां गए तो जैसे ही ये लोग पहुंचे, तुलसीदास जी तो सो रहे थे और कुटिया के दरवाजे पर दोनों तरफ श्याम गौर दोनों भैया पहरा दे रहे थे। बड़ा प्रकाश फैला था, सच्ची घटना है, ये कल्पना नहीं है, बड़ा प्रकाश फैला था। तो चोर वहां जाए कैसे, वहां तो जा नहीं सकते थे, पहुंच नहीं सकते थे, उस प्रकाश को देख करके सहन नहीं कर सकते थे, ये कौन है, ये कैसा प्रकाश है। तो वे तो लौट गए, दूर से ही लौट गए और उनके ध्यान में कुछ आया है ना। अब उस दर्शन का एक प्रभाव हुआ, उनके भीतर से बुरी भावनाएं मिट गई। तो होगा ही नहीं, सूर्य का उदय होगा तो प्रकाश में अंधकार तो मिटेगा ही। तो वे चोर गलत उद्देश्य लेकर गए थे, तब भी उस परम प्रकाशक प्रभु का प्रकाश उनको देखने में आ गया तो उतने ही से उनका हृदय बदल गया। दूसरे दिन वे दोनों गोसाई जी के पास आए, अपने नागरिकों के वेश में आए और आकर के इनके चरणों में गिर गए कि महाराज हम लोगों को क्षमा करिए, बड़ी भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तो उन्होंने सब कथा सुना दी कि अमुक अमुक पंडित ने मुझसे हम लोगों को ऐसा कहा था और हम लोग चोरी करने आए, तो महाराज क्या बताएं, आपकी इस कुटिया के दरवाजे पर तो बड़े सुंदर सुंदर मनोहर श्याम गौर दो बालक खड़े थे और इतना प्रकाश फैल रहा था, इतना प्रकाश फैल रहा था पंडित जी गोस्वामी जी कि हम लोगों से तो सहन नहीं हुआ तो हम लोग भाग गए। तो आज से अब से हम लोग कभी भी चोरी नहीं करेंगे, गोस्वामी जी हम लोगों को अपना शिष्य बनाइए। तो गोस्वामी जी शिष्य को क्या बनाएंगे और गोस्वामी जी को इस बात का हर्ष तो नहीं हुआ, बड़े दुखी हो गए। अरे 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 मेरे सरकार को इन पोथियों के लिए कष्ट उठाना पड़ा, पहरा देना पड़ा, अब क्या करेंगे इसको रख के, अब क्या करेंगे इसको रख के। इतने अधीर हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने उस समय के समसामयिक जो बादशाह थे अकबर बादशाह उनके मंत्री थे राजा टोडरमल जी, टोडरमल जी से गोस्वामी जी की मित्रता थी और वो बादशाह के मंत्री थे, उनके पास सुरक्षा का बहुत इंतजाम था। गोस्वामी जी ने एकदम अपनी लिपियों को लिखी हुई रामायण की प्रतियों को उठा करके ले जाके राजा टोडरमल को दिया मित्र को कि तुम इनको संभाल करके रखना, और कुटिया एकदम खाली कर दी। कितना विरह उपजा, कितनी व्याकुलता हुई उस भक्त हृदय को, कितनी पीड़ा हुई कि हाय हाय ये मैंने क्या किया, इनके लिए सरकार को पहरा देना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा, अत्यंत व्याकुल हो गए। तो भक्त का जो हृदय होता है वो अपने प्यारे को प्यार देने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि मैं सो गई तो तुम क्यों नहीं आए पहरा देने, सो नहीं है ये भक्ति की बात नहीं है। तो मैं आपकी सेवा में यह निवेदन कर रही हूँ कि खास खास प्रकार की जो धारणा बना करके बैठ जाते हैं भाई बहन कि मेरी भक्ति का ये फल होगा, तो वो अपनी बनाई हुई धारणा जो है वो भक्ति की वृद्धि में बहुत बाधा पहुंचाती है। इसलिए धारणा बना के मत बैठो, उनके होकर रहना पसंद करो, फिर देखो उनकी क्या मौज होती है, बड़ा आनंद होगा, बड़ा आनंद होगा जब हम लोग अपनी तरफ से अपने को बिल्कुल उनकी प्रसन्नता पर छोड़ देंगे कि महाराज अब इस दीनहीन तुच्छ नगण्य जीवन को आप जैसे चाहे वैसे अपनी विभूतियों से संपन्न करें, अपनी प्रसन्नता के लायक बनावे, तो अपना संकल्प छोड़ दो, अपनी कल्पना छोड़ दो। और महाराज मुझको समझाने के लिए मेरी भाषा का प्रयोग करते तो कहते कि देवी जी दिमाग में भगवान का कार्टून मत बनाना, कार्टून अखबारों में आप लोगों ने कार्टून देखा होगा, व्यंग चित्र कार्टून का अर्थ होता है। तो कहते देवी जी तुम दिमाग में भगवान का कार्टून मत बनाना, प्यारे बड़े रसिक हैं, प्यारे बड़े कौतुकी हैं, प्यारे बड़े कृपालु हैं, बड़े प्रेमी हैं, तुम अपनी तरफ से केवल एक बार अपने को छोड़ दो, फिर देखो कि इस मिट्टी से ये कितना सुंदर खिलौना गढ़ लेंगे, फिर उससे खुद को रिझाएंगे और तुमको भी रिझाएंगे। ईश्वर भक्ति का यह अर्थ है जो स्वामी जी महाराज के अनुभव से सिद्ध है और जो मानव सेवा संघ के सिद्धांत के अनुरूप है। अब समय तो खत्म हो गया, कथा तो खत्म होती नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो सरस कथा जीवन को पवित्र करे इसी भावना से अब सब भाई बहन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे।